జయదౌళ పుస్తక తెరివి లెక్చర్ నంబర్ 5. ఓం నమః సిద్ధేభ్యః. ఓం నమః సిద్ధేభ్యః. ఓం నమః సిద్ధేభ్యః. ఓం శుద్ధాత్మనే నమః. నమో అరిహంతాణం. నమో సిద్ధాణం. నమో ఆయరియాణం. నమో వచ్చాయ. నమో లోహే సౌవసాహూణం. కవియగణగాయికమ్మం. భవ్యజనానందకారిణం వీరం. నమిూణపణిస్తామో यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तेरहवीं पुस्तक में अभी हम दर्शन मोक्ष अपना का अधिकार देख रहे हैं और पृष्ठ संख्या है 44। अपूर्वकरण की विस्तार की चर्चा के बाद अभी यहाँ अनिवृत्तिकरण की बात चल रही है अपनी। तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि अनिवृत्तिकरण के शुरुआत में पृथक्त्व लक्ष्य करोड़ इतने स्थिति है कर्मों की, और फिर वो बाद में क्या होता है उसमें स्थिति कांडक आदि के द्वारा संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर दर्शन मुनि के स्थिति की बात चली, अन्य कर्मों की नहीं। तो कितनी हो जाती है, तो असंगी समान होती है 1000 सागर, फिर चतुर इंद्रिय के समान 100 सागर, फिर 50 सागर, 25 सागर, सागर, फिर और घटते घटते पल्ले प्रमाण हो जाते हैं। तो ये लक्ष्य पृथक्त्व करोड़ से लेकर पल्ले तक स्थिति कांडक का आयाम कितना है, तो पल्ले का संख्या का भाग। अब इसके बाद क्या होगा, संख्या बहुभाग। अभी के कांडक, इसके आगे जो कांडक बनेंगे, तो संख्यात बहुभाग का घात होगा और संख्यात भाग शेष रहता चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो कब तक चलेगा, तो अंतिम संख्यात भाग शेष रहने तक ये चलेगा। ये तो हमने कल पढ़ा था विस्तार से। तो उसके बाद क्या होता है, वो अभी हम 44 नंबर पृष्ठ पर पढ़ेंगे। ये बीच वाला जो सूत्र है, नीचे से दूसरा 64 के ऊपर वाला, तदो शेषस्थ संखेजा भागा आगाईवा। उसके बाद जो स्थिति सत्कर्म शेष रहे उसके संख्यात बहुभाग को स्थिति कांडक के लिए ग्रहण किया जाए, यानी वो लास्ट वाला संख्यात भाग, संख्यात बहुभाग वाला। यह सूत्र गतार्थ है, यानी यही इसकी प्ररूपना पहले ही बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं। एवं स्थितिखंडय सहस्रेषु गदेषु दूरावकीर्ति पलिदोवमस्य संखेज्य भागे स्थितिसंत कम्मे शेषे तदो शेषस्य असंखेज्या भागा आगाईदा। इस प्रकार हजारों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर तथा पल्लोकों के संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर दुरापकृष्टि होती है। अब इस विशिष्ट जो स्थिति बाकी रहेगी उसका नाम है दुरापकृष्टि। वो कितनी है, तो पल्ले के संख्यात वे भाग प्रमाण। इसके पहले भी संख्यात वा भाग था, पर इसकी कुछ विशेषता है, इसके लिए इसका नाम है दुरापकृष्टि। उसके बाद शेष स्थिति सत्कर्म के असंख्यात बहुभाग को स्थिति कांडक के लिए ग्रहण किया। अब तक क्या था, वो पल्ले प्रमाण हुआ था, उसके बाद संख्यात बहुभाग कांडक के रूप से नष्ट होता था और पल्ले के संख्यात्वा भाग शेष रहता। वो संख्यात्वे भाग का भी संख्यात बहुभाग नष्ट होता था, उसका भी संख्यात्वा भाग शेष रहता। ऐसे करते 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 ऐसे पोजिशन पर आ गए हैं, उसका नाम उन्होंने दुरापकृष्टि कह दिया। इसके आगे क्या होगा, पल्ले का असंख्यात बहुभाग कांडक रूप से नष्ट होगा, असंख्यातवा भाग शेष रहेगा। यानी दुरापक ऋषि उसे कहते हैं कि इसके पश्चात कांडक का प्रमाण असंख्यात बहुभाग प्रमाण होगा, जितनी स्थिति है उसका असंख्यात बहुभाग नष्ट होगा, असंख्यातवा भाग शेष रहेगा। भाग शेष रहेगा, असंख्यात बहुभाग कांडक होगा। बहुत बड़ा कांडक, बहुत बड़ा कांडक का प्रमाण, बहुत बड़ा, क्योंकि असंख्यात भाग करके बहुभाग लेना है, मात्र असंख्यात का भाग स्थिति शेष रहेगी। हम कहते हैं ना, संख्यात के लिए हम मान लेते चार है और असंख्यात के लिए मान लेते हैं पंद्रह है, तो हम अगर चौथा भाग शेष रहता है यानी तीन चतुर्थांश नष्ट होता है और वहाँ पंद्रह लिया तो पंद्रहवा भाग शेष रहता है, चौदह पंद्रह अंश नष्ट होता है, या सोलह ले लो उसको, पंद्रह सोलह अंश नष्ट हुआ और यहाँ तीन चतुर्थांश नष्ट हुआ, तो तीन चतुर्थांश को पंद्रह सोलह अंश के रूप में करेंगे, तो तीन चतुर्थांश को या बारह सोलह अंश को एक ही बात है ना। अभी तो हमने बहुत छोटी संख्या ली, वहाँ तो असंख्यात बहुभाग में बहुत ज़्यादा चलेगा। इस प्रकार पल्ल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से लेकर उत्तरोत्तर शेष रहने वाले स्थिति सत्कर्म के, यानी जितना जितना बाकी रहता है उसका संख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग को ग्रहण कर स्थिति कांडक घात करने वाले जीव के, ऐसे कितने हुए जहाँ संख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक होता था तो वो भी संख्यात हजार हो जाते हैं, तो ऐसे संख्यात हजार स्थिति कांडकों के जाने पर उससे नीचे बहुत दूर गए हुए जीव के, बहुत दूर गया हुआ है ना, बहुत बार वो करते 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 बहुत आगे बढ़ गया, यानी बहुत बार स्थिति कांडक घात हुए हैं, इस उस जीव को दुरापकृष्टि संज्ञा वाला, उसका नाम ही दुरापकृष्टि, यानी उसका जो घटाते घटाते बहुत दूर तक गया है, दुरापकृष्टि संज्ञा वाला सबसे अंतिम पल्ल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष रहता है, क्योंकि संख्यात बहुभाग नष्ट हुआ संख्यात्वा रहा, संख्यात बहुभाग नष्ट हुआ संख्यात्वा रहा, वो भी कितना है, फिर भी वो शेष जो दुरापकृष्टि वाला है उसका प्रमाण क्या है, तो पल्ल्य का संख्यात्वा भाग ही है। इसके नेक्स्ट जो स्थिति कांडक होगा असंख्यात बहुभाग नष्ट करेगा तो कितना बचेगा, पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग, यानी इसके बाद वाला जो शेष बचा हुआ स्थिति है स्थिति सत्कर्म वो पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग है। अब तक पल्ल्य का संख्यात्वा भाग शेष रहता था, इसके बाद में एक कांडक हाथ होते ही पल्ल्य का असंख्यातवा भाग शेष रह जाएगा स्थिति सत्कर्म, फिर और दूसरा कांडक वो भी असंख्यात बहुभाग नष्ट होगा, असंख्यातवा भाग शेष रहेगा, सबको हम पल्ल्य का असंख्यातवा भाग ही कहेंगे तो उसका प्रमाण भी घटते चला जाएगा। पुनः उससे आगे शेष के, शेष के यानी शेष स्थिति सत्व के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करता हुआ स्थिति कांडक घात करता है, क्योंकि उस अवस्था में जीव के बाह्य और अभ्यंतर कारणों का सन्निधान होने से उस प्रकार के घात करने की शक्ति पाई जाती है, यानी उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि उसके वजह से शक्ति पाई जाती है, इतना बड़ा घात हो जाता है। बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य यानी वो कर्मों की बात है लेना, उसमें बाह्य कारण में कर्मों का अनुभवहीन होकर उदय में आ रहा है और जीव की विशुद्धि बढ़ रही है, दूसरा कुछ नहीं ले सकते ना वहां पर दूर। हाँ नहीं, पल्ल्योपम के बाद एक बार पल्ल्य स्थिति आ गई, पल्ल्य के बाद संख्यात बहुभाग नष्ट हुआ, संख्यात्वा भाग शेष रहा एक बार, फिर संख्यात बहुभाग गया, संख्यात्वा शेष रहा, फिर भी पल्ल्य का संख्यात्वा भाग शेष रहा, ऐसे करते 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 पल्ल्य का संख्यात्वा भाग ही शेष रह गया है। इसके बाद क्या होगा, असंख्यात बहुभाग नष्ट होकर पल्ले का असंख्यातवा भाग शेष रहेगा उस पोजीशन का, तो अंतिम पल्ले का संख्यातवा भाग शेष रहा उसको कहा, उसका नाम ही उन्होंने दूरापकृति लिखी। लाख पृथक्त्व से शुरू किया था अनिवृत्तिकरण के शुरू में, वही स्थिति सत्कर में घटते 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 कितना हुआ, तो हमने कहा हजार सागर, सौ सागर, पचास सागर, पच्चीस सागर, सौ एक सागर, पल्य। फिर क्या होगा, संख्यात वहां से संख्यात बहुभाग नष्ट होने लगा। अब तक कितना नष्ट होता था, पल्य का संख्यात का भाग, कांडक का प्रमाण, अब कितना होगा वो नहीं, संख्यात का भाग ही कहेंगे, फिर भी वो संख्यात बहुभाग है, पल्य का उसका नाम भी पल्य का संख्यात का भाग ही कहेंगे। देखो दस भाग में से नौ नष्ट हुए, एक रह गया, तो क्या कहेंगे, वो भी संख्यात भाग, ये भी संख्यात भाग, फिर भी वो संख्यात बहुभाग कहना उसको, जितनी शेष स्थिति है उसका संख्यात बहुभाग नष्ट हुआ, संख्यातवा शेष रहा, तो संख्यातवा शेष, संख्यातवा शेष, संख्यातवा शेष करते 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 सबका नाम क्या है, पल्ले का संख्यात भाग। अब ऐसे पोजिशन पर आ गया है कि इसके पश्चात क्या होगा, असंख्यात बहुभाग नष्ट करेगा, और अभी शेष कितना रहेगा, पल्ले का असंख्यात भाग, यानी पहली बार पल्ले का असंख्यात भाग शेष रहेगा। इसके आगे क्या होता था, पहले पूर्व में पल्ले का संख्यातवा भाग शेष रहता, अब असंख्यातवा भाग शेष रहेगा, असंख्यात बहुभाग नष्ट होगा। ये कांडक के पूर्व वाला जो अंतिम पल्ले का संख्यात भाग प्रमाण जो शेष स्थिति रहती है उसका नाम दुराकुपुष्ट। ये स्थिति सत्व में लगा रहे हम यहाँ पर, अच्छा उसको बाह्य कारण लेना, परंतु अभी तो ये तीर्थंकर के पादमूल में तो पहले से ही था ना,
पर अभी स्थिति इतनी बड़ी वो बाह्य कारण में ले सकते हो, क्योंकि सपना का कार्य हो रहा है,
अभी यथा योग्य हो कुछ भी ले सकते, अभी अनिवृत्ति करण है ना, वैसे तो करण परिणाम है, ये बाह्य कारण तो पूर्व में हम घटित करते हैं। जैसे समयों का बाह्य कारण क्या है, उपदेश है, जाति स्मरण है, वेदना है, वो बहुत पूर्व में रह जाते हैं, फिर भी उसको कारण कहने में आता है, वैसे यहाँ भी घटित करे चले, कर्म ठीक लगता है। शंका, दुरापकृष्टि किसे कहते हैं, कहते हैं समाधान, कहते हैं जिस अवशिष्ट सत्कर्म में से, अवशिष्ट ने बाकी बचा हुआ संख्यात बहुभाग को ग्रहण कर स्थिति कांडक का घात करने पर, घात करने से शेष बचा स्थिति सत्कर्म नियम से पल्योपुंग के असंख्यात वे भाग प्रमाण होकर अवशिष्ट रहता है, उस सबसे अंतिम पल्योपुंग के संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म को दुरापकृष्टि कहते हैं। अच्छा है ना, संख्यात बहुभाग ग्रहण करने पर बाकी जो रहा वो असंख्यात का भाग प्रमाण रह गया,
नहीं नहीं संख्यात का भाग, जब भी संख्यात का भाग प्रमाण लास्ट ग्रहण रह गया उसके पीछे असंख्यात का भाग,
यहाँ असंख्यात क्यों लिखा, ऊपर क्या लिखा, जब तो फिर संत कम्मावत ऐसे संख्य जय भागे घेतु न फिर खंडे घादी जमाने घादी दशेषम नियमा पलिदोमस असंख्य यदि भाग प्रमाण हो दो न शिक्षति,
तो आगे लिखा है ना, उस सबसे अंतिम पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण स्थिति कर्म को गुरा पुष्टि कहते हैं, उसका आगे ही लिखा है,
तम सर्व पश्चिमम पलिदोमस संख्य यदि भाग प्रमाण सिद्धि संत कम्मम दुराव किसी बनी दे बन दे, यानी उसके बाद असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करना चालू हो जाता है, यानी यहाँ तक उसने संख्यात बहुभाग को ही नष्ट किया था। हाँ वो असंख्यात बीच में डाला ना उन्होंने, वो कुछ गड़बड़ी,
तो
पश्चिम है ने पूर्व में सव पश्चिम। हाँ संख्या भाग प्रमाण शेष रहा उसको लेना यहाँ पर। उसके बाद में अभी अभी बहु भाग लेगा और तभी अवशेष भाग भी असंख्यात भाग रहेगा वो बराबर। शंका इस स्थिति विशेष की दुरापकृष्टि संज्ञा किस कारण से है? क्योंकि पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से अत्यंत दूर उतर कर सबसे जघन्य पल्योपम के संख्यात्व भाग रूप से इसका अवस्थान है। पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से नीचे अत्यंत दूर तक अपकर्षित की गई होने से अपकर्षित हुए वो घटाई गई ना और अत्यंत कृष यानी अल्प होने से यह स्थिति दूरापकृष्टि है। दूर अपकृष्टि दूर तक गया है अप यानी अपकर्षित हुई है और कृष्टि यानी कृष हो गई अथवा इसका स्थिति कांडक अत्यंत दूर तक अपकर्षित किया जाता है इसलिए इसका नाम दूरापकृष्टि है। यहां से लेकर अभी इसके पश्चात असंख्यात बहुभागों को ग्रहण कर ग्रहण हुआ है स्थिति कांडक घात किया जाता है। उपग्रह करना उसका प्रयोग है ना अतः यह दुरापकृष्टि कहलाती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यहाँ दर्शन मुनि की क्षपणा में दर्शन मुनि की स्थिति वो घटा रहा है उसको ये नाम दिए। आगे चलकर जब क्षपणा की बात आएगी तो उसमें तो स्थिति बंध को भी ये दुरापकृष्टि नाम देंगे और स्थिति सत्व को भी ये नाम देंगे। वो चलकर आगे बात आएगी क्षपणा की बात क्योंकि वहां भी स्थिति बंध ऐसे घटता चला जाता है। पल्य प्रमाण होता है फिर संख्यात भाग होता है असंख्यात भाग होता है आगे उससे भी कम होता है। वहां भी ये सेम नाम फिर दोबारा आने वाला है कौन सा दुरापकृष्टि वाला। अब यहाँ तो अच्छी तरह से समझ में आया क्या हो रहा है बिल्कुल। चलो अभी आगे 40 पृष्ठ वहाँ चारित्र मुनि के हाँ पर वहाँ दुरापकृष्टि नाम तो वहाँ पर भी आने वाला है। दुरापकृष्टि नाम वहाँ पर है अब यहाँ प्रश्न पूछते हैं क्या यह दुरापकृष्टि एक विकल्प वाली है या अनेक विकल्प वाली है यानी उसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन प्रमाण एक ही होगा कि अलग अलग भेद वाली होगी दुरापकृष्टि ये यहाँ पूछ रहे हैं। देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर दर्शन मुख की क्षपणा का कार्य चल रहा है। जीव अनिवृत्तिकरण में आ गया है मंजू बहन लेटा है ना इसलिए आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। तो अनिवृत्तिकरण ने तीन करण परिणामों में से अनिवृत्ति में आया है तो उसका स्थिति सत्व कितना है सत्ता में जो स्थिति बाकी है दर्शन मुनि की अन्य कर्मों की नहीं अन्य कर्म तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर है। तो 40 पृष्ठ पर जो 40 के बाद हमने देखा था ना अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में 41 पृष्ठ पर देखा था तो वहाँ स्थिति कितनी है तो एक कोटि के नीचे है तो कितने तो पृथक व लाख सागर है कुछ लाख करोड़ है ना बीच में नहीं कोटे के नीचे पृथक व लाख सागर है। तो हमने ये पृथक व लाख सागर इतनी स्थिति से शुरू किया। अब स्थिति कैसे घटती है तो स्थिति कांडक घात होते चले जाते तो कितना स्थिति कांडक का घात पल्ल और ये संख्या की साइन पल्ल के संख्या के भाग प्रमाण एक एक कांडक होता चला जाता है स्थिति घटती चली जाती है। कब तक चलेगा ऐसा घटते 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 हजार सागर हुआ सौ सागर हुआ पचास सागर पच्चीस सागर एक सागर पल्ले प्रमाण हो गई तो हम पल्ले तक के सभी भेद लेते हैं। वहाँ तक कांडक का प्रमाण कितना है तो पल्ले का संख्या तो भाग एट अ टाइम इतना नष्ट होता है एक एक अंतर्मुखी पल्ले प्रमाण हो गए अभी, इसके बाद क्या होगा? अभी तो जितना है ना वो तो संख्या स्वा भाग नष्ट होता था, पल्ले का संख्या स्वा भाग नष्ट हुआ और पल्ले प्रमाण शेष रहा, यानी नष्ट होने वाला संख्या स्वा भाग था। अब इसके आगे क्या होगा? नष्ट होने वाला संख्या बहुभाग होगा और शेष रहने वाला संख्या स्वा भाग होगा। मान लेते ना दस भाग करेंगे तो नौ नष्ट हो गए, दसवा भाग रहे, तो यहाँ संख्यात बहुभाग संख्यात बहुभाग संख्यात बहुभाग जाता रहेगा और शेष कितना रहेगा? शेष रहने वाले को भी पल्ले का संख्या तो भाग ही कहेंगे, शेष रहने वाला यानी जैसे पहले दसवा भाग शेष रहता था, फिर उसका पचासवा भाग शेष रहा, फिर सौवा भाग शेष रहा, हजारवा भाग शेष रहा, फिर भी क्या कहेंगे? संख्या का भाग शेष रहेगा। ये कब तक चलेगा? तो आगे चलते 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 बहुत दूर तक जाकर एक का नाम है यहाँ दूरापकृष्टि। ये दूरापकृष्टि क्या है? ये हर बार संख्या बहुभाग नष्ट हुआ, संख्या बहुभाग और संख्या त्वा भाग शेष रहा, ऐसे करते 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 यहाँ तक आए। तो अभी ये संख्या बहुभाग नष्ट होने का लास्ट पॉइंट है, संख्या बहुभाग नष्ट होकर विशिष्ट यहाँ जो दूरापकृष्टि नाम की स्थिति बाकी रही। अब इसके आगे संख्यात बहुभाग नष्ट नहीं होगा, असंख्यात बहुभाग नष्ट होगा। यहाँ स्थिति कांडक का प्रमाण पल्ले का संख्यात वा भाग था, फिर भी वो नष्ट होने वाला संख्यात वा भाग था और शेष रहने वाला संख्यात बहुभाग था। उसके आगे संख्यात बहुभाग नष्ट होने लगा, संख्यात वा भाग शेष रहने लगा, ऐसे करते करते दूरापकृष्टि आई। तो यहाँ तक संख्यात बहुभाग नष्ट होता था, इसके आगे क्या होगा? पल्ले का ये असंख्यात की साइन, पल्ले का असंख्यात का भाग शेष रहेगा, असंख्यात बहुभाग नष्ट हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा पोर्शन नष्ट होगा स्थिति का। ये मात्र दर्शन मुनि में हो रही है, दर्शन मुनि के तीनों में हो रहा है, अन्य कर्मों में ये इतने बड़े स्थिति कांड घात नहीं होते, उनके छोटे प्रमाण में होंगे परंतु उनकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी ही रहेगी। यानी ये परिणाम ऐसे है कि मात्र दर्शन मुनि में ये कार्य चल रहा है, अन्य कर्मों में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। निंदित हैं उनकी स्थिति इतनी मात्रा में नहीं जा रही। तो ये दूरापकृष्टि के बाद असंख्यात अभाव शेष रहेगा, असंख्यात बहुभाग नष्ट होता चलेगा। अब इसके ऊपर ये चर्चा समाधान यहाँ चल रहा है। हाँ, अभी इसके बाद असंख्यात अभाव हो जाएगा।
यहाँ पे क्या है, ये उत्कीर्ण काल है जो स्थिति कांडक का, वो चारित्रमो में और बाकी के कर्मों में वो बड़ा होगा और यहाँ पे छोटा होगा ये काल, क्योंकि पहले तो समान पल्ले का संख्या का भाग ही नष्ट होता है, कभी अंत कोड़ा कोड़ी समान की स्थिति रहती है।
देखो तो, अपने स्थिति के प्रपोर्शन में उसका कांडक का प्रमाण होता है, प्रत्येक कर्म में समान नहीं होता ये बात सोचिए, क्योंकि जैसे हम द्वितीय कर्म है तीसरी और चालीसी है, जिनके जिनके 20 कोड़ाकोड़ी होती है, 30 कोड़ाकोड़ी, 40 कोड़ाकोड़ी, भले सबके लिए स्थिति घटकर अंत कोड़ाकोड़ी हो जाए, फिर भी उसका प्रोपोर्शन इसी अनुपात में, इसी प्रोपोर्शन में रहता है। जैसे 20 से 30 डेढ़ गुना है और 20 से 40 दो गुना है, वो श्रेणी में भी ये प्रोपोर्शन कायम रहता है। अभी उसकी चर्चा इसलिए यहाँ नहीं करना है क्योंकि उसके स्थिति कांडक अलग होते हैं। अब यहाँ जितना स्थिति कांडक दर्शन मुनि का हो रहा है वैसे उतना नहीं है, परंतु उसका अपना अपना अलग होगा। यहाँ जयधौला में तो मात्र मुख्यतः मुनि की ही चर्चा है, अन्य की नहीं। फिर भी जब सपना में शायद होगी सभी कर्मों की बात, जो हमने लब्धिचार सपनाचार में देखा है, ख्याल में आती ना, वहाँ तो लब्धिचार सपनाचार में सभी कर्मों की इतनी डिटेल में बातें की, उसमें हर एक कर्म का अपना अपना कितना अलग अलग होता है स्थिति बंध, उसकी चर्चा करेंगे करेंगे नहीं, जब लब्धिसार हम देखेंगे दोबारा तब। एक बार देख लिया बहुत टाइम हो गया ना अभी।
हाँ
नष्ट होता है। इन्होंने अभी ऊपर यहाँ जो लिखा है वो असंख्यातवा भाग कहा, क्योंकि नष्ट होने वाला संख्यात बहुभाग है, फिर भी बचने वाला असंख्यातवा भाग शेष रहा, ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। हाँ, यानी नष्ट कितना हुआ तो संख्यात बहुभाग नष्ट हुआ, फिर भी बचा हुआ पल्ले का असंख्या का भाग रह गया, ये यहाँ लिखा है उन्होंने। वो तो लिखा परंतु स्पष्टीकरण में फिर उन्होंने और मूल प्राकृत में है। वहाँ उन्होंने जो लिखा ना तीसरे लाइन में असंख्याकृत भाग प्रमाण शेष रहता है, यही वो बात बताते नहीं, इसके बाद बहुभाग नष्ट होगा।
हाँ
बाद में, हाँ
अब अपन ने जिसे पल्ले का गिनती आई क्योंकि पल्ले का संख्या तो भाग लाया
का संख्या तो भाग लिखा है ना,
पहले तो संख्या तो भाग लिखा है देखो।
हाँ यहाँ पे किसी संख्या का भाग
क्या
चाहता
हूँ, केवल बताते हैं
देखो यहाँ ना दो तीन बार संख्या का भाग शेष रहता है लिखा है 44 पृष्ठ पर, मूल सूत्र में लिखा है नीचे से तीसरी लाइन, यानी नीचे का सूत्र ही पढ़ो ना। इस प्रकार हजारों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर तथा पल्लवों के संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर दुरापकृति होती है, शेष रहने की बात की उन्होंने, और उसके बाद क्या होता है वो हमने देखा था 45 पृष्ठ पर दूसरी लाइन, नीचे बहुत दूर गए हुए जीव के दुरापकृति संज्ञा वाला सबसे अंतिम पल्लवों के संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष रहता है, यहाँ भी संकेत जी लिखा। हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट में लिखा है उन्होंने, फिर भी समाधान के तीसरे लाइन में उन्होंने पल्लवों का असंख्या का भाग। हाँ
फिर वहाँ पे ये जो समाधान में जो पल्लव का असंख्या भाग प्रमाण होकर अवशेष रहता है,
अवशेष भी पल्लव का संख्या का भाग रहता है, ये सर्वत्र आया है, केवल समाधान की तीसरी लाइन में असंख्यात्वा कहा।
अभी क्या, अभी जो पल्लव का संख्यात्वा भाग बाकी रहेगा, अभी जो पांडव होगा उसके पश्चात जो स्थिति रहेगी वो पल्लव का संख्या के
उसके बारे में चर्चा नहीं,
ये अवशिष्ट रहता है नियम से पल्लवों के असंख्या के भाग प्रमाण होकर अवशिष्ट
वो बाद में है। बाद में होती है, उसकी चर्चा नहीं है। अंतिम पल्लवों की संख्या के भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म को दूर प्रश्न।
हाँ।
तो यानी ये असंख्यात जो लिखा है वो गलत रह गए, उसी का तो उन्होंने भाषांतर किया है ना, क्योंकि अवशिष्ट रहता है उस सबसे अंतिम पल्लवों के संख्या के भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म को दूरापकृति कहते हैं, यानी ये जो अ है वो डाउटफुल है। समाधान के तीसरे लाइन में शुरू में जो लिखा है ना और वो ऊपर का ही उन्होंने भाषांतर किया, निकालना है कि लब्धिसार में देखना है, आपकी आपकी पुस्तक उधर अंदर है
देख लेना,
वो अभी मैं जो जिसमें से कर रही हूँ आपको मिलेगी, वो ला रहे हैं। मूल लब्धिसार भी लाना, इनकी भी लाना, संदृष्टि भी लाना। संदृष्टि में तो हम असंख्यात है, संख्यात की साइन तो दूसरे हाँ दोरा पर भी कुछ बार बार हाँ उसी की चर्चा कर लिया आपको दू क्या एक सपना का डायरेक्ट निकाल देना हम अनुक्रमणी का नहीं कह ये बहुत हाँ फिर भी जितनी मिस्टेक इसमें है ना वो सबकी सब मिस्टेक है। बहुत बहुत संदृष्टि में तो गजब का है बाप रे बाप। ये वो मूल संस्कृत में से पढ़ना पड़ता है फिर '97 कितने स्थिति सत्व के शेष रहने पर दुरापकृष्टि होती है 97 पेज पर पढ़ रहे। ये आपका जो लब्धि सार है ना या देखो ये लब्धि सार ग्रंथ है आगाज से छपी हुई कॉपी है इसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी है और ये फुलचन जी शास्त्री ने संपादन किया हुआ पेज नंबर 97 ताते ऊपरी पल्ले को संख्यात का भाग दिए तहां बहुभाग मात्र आयाम धरे ऐसे संख्यात हजार स्थितिखंड भये दुरापकृष्टि नामा स्थिति सत्व नियम करी हो है। पल्ले को उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिए जो प्रमाण आवे ताते एक एक घटता क्रम करी पल्ले को जघन्य परिता संख्यात का भाग दिए जो प्रमाण आवे वहां पर्यंत दुरापकृष्टि के सर्व भेद जाने। ये अनेक विकल्प हो गए ये सब हो गए यानी कितने हुए उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे तो संख्यात का भाग शेष रहे उत्कृष्ट संख्यात प्लस एक ये बढ़ते चले जाए तो परि जघन्य परिता संख्यात का भाग
तो एक ही विकल्प हो गया ना क्या
हाँ देखो तीन विषय यहाँ कोई संभवता भेद जानना विशेष दुरापकृष्टि किसे कहते इस प्रश्न का समाधान करते हुए ये फूलचंद जी शास्त्री ने लिखा है श्री जयधवला में बतलाया है जयधवला का वहाँ रेफरेंस देते हैं पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से अत्यंत दूर उतर कर सबसे जघन्य पल्लोपम के संख्यात वे भाग प्रमाण जो स्थिति सत्कर्म शेष रहता है उसकी दुरापकृष्टि संज्ञा है क्योंकि पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से नीचे अत्यंत दूर तक अपकर्षित की गई होने से और अत्यंत कृशय ने अल्प होने से यह स्थिति दुरापकृष्टि कहलाती है। अभी हमने जो पढ़ा था वही उसी की बात अथवा इसका स्थिति कांडक अत्यंत दूर तक अपकर्षित किया जाता है इसलिए दुरापकृष्टि यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर बात आगे रहता है परंतु यहाँ अभी यहाँ देखते हैं मूल संस्कृत में देखते हैं इसमें से यहाँ तो दुरापकृष्टि की संदृष्टि होगी डायरेक्ट समय को अधिकार यहाँ से शुरू है यहाँ दुरापकृष्टि की बात है क्या दुरापकृष्टि में पल्ले का संख्यात्व भाग ही किया है उन्होंने पांच बार पांच से भाग दिया है देखो इसमें ये तीन पर्व बताए, मैंने अपनी वहाँ संदृष्टि करके लिखा है। जैसे मैंने बताया ये पृथक्व लाख सागर, 7 से 8 लाख सागर यहाँ हमने लिया। उसके बाद पल्ले वाली, इसके बीच में पल्ले का संख्या तो अभाग प्रमाण कांड है, पल्ले से लेकर दुरापकृष्टि तक। दुरापकृष्टि के लिए उन्होंने साइन ऐसी बताई, पल्ले का संख्या तो अभाग है ना, 5 ये संख्या है, ये बहुत बार संख्या तो अभाग दिया इसलिए इस तरह से लिखा। इसका नाम उन्होंने दुरापकृष्टि दिया। वहां तक संख्या बहुभाग, संख्या बहुभाग नष्ट हुआ। तो संख्या बहुभाग जो नष्ट हुआ था, संख्यात बहुभाग के लिए क्या कहेंगे, पल्ले को संख्यात का भाग देंगे और एक माइनस संख्यात से गुणा कहेंगे, तो ये संख्यात बहुभाग, संख्या बहुभाग नष्ट हो जाएगा। वो नीचे 5 और 4 ही देखना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, तो असंख्यात बहुभाग नष्ट होगा।
हाँ,
जिसमें से लिया है ये है संख्या का भाग। आगे जो कांडक है, कांडक के लिए इसको असंख्या से गुण भाग दिया और असंख्या को एक माइनस से गुणा किया, इसका अर्थ इसका प्रमाण इतना ही है, ये नक्की हो गया। यानी पल्ले का संख्या का भाग ही उसका प्रमाण है, दुरापकृष्टि का प्रमाण संख्यात्वा भाग ही है। हाँ, वहाँ जो असंख्यात्वा भाग शेष रहता है लिखा है, वो एक ही बार आया है, तो हो सकता है वो अभी उसके पेंसिल से राउंड करके डाउटफुल रखो। ऊपर जो है, ऊपर से 3, 3, 6, 7वीं लाइन में है, नीचे से भी 7वीं लाइन में। फलिदोम से असंख्य चि भाग प्रमाणम हो दो न चित्थदी तम सर्वपश्चिमम पलिदोम से संख्य चि भाग प्रमाणम। यहाँ आगे तो तम यानी वसी, उसी को पल्ले का संख्या तो अभाव कहते हैं। यानी पहले बार जो अ लिखा है वो नहीं चाहिए ऐसा लगता है, नीचे भी उस अ को निकालना। यानी ये अब तक जो, अभी तक जो संख्या तो अभाग, संख्या तो अभाग, संख्या का भाग शेष रहता था, उसमें ये लास्ट पॉइंट है। अभी इसके बाद एक कांडक होगा तो पल्ले का असंख्यात बहुभाग उसमें लिया
हाँ,
और बाकी नष्ट होगा, असंख्यातवा शेष रहेगा इसके पश्चात। अब इसकी संबंधी शंका समाधान चलेगी 46 पेज पर अपने पुस्तक जयदोला में। टोडरमल जी के जमाने में उनके सामने ना धवला थी ना जयधवला थी, फिर भी उसमें इतना क्लेरिफिकेशन होता है ना।
हाँ
अभी जो उपदेश आएंगे चलते आएंगे उसको कहेंगे। अब क्या था, ये तो हस्तलिखित था उस जमाने में, आज के जमाने में इतनी मिस्टेक होती है। कंप्यूटर वो डीटीपी करने वाले का अक्सर कुछ शब्द मालूम नहीं होते तो कहीं का कुछ लिखा जाता है। अब ये भूल अपने पकड़ में आएगी, ये नहीं हो सकता। वहाँ तो बस लिखने का कार्य कर दिया, लिखने वाले पैसे देकर द्रव्य देकर उनको लिखवाते, अभी उसको कितना चेकिंग होता था मालूम नहीं। अब यहाँ तो ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं परंतु उसमें वही मिस्टेक तो सब रहेगी चलेगी। टोडरमल जी ने कितनी बार लिखा है, जो किसी को वो भूल पकड़ में आवे तो उसको ठीक करना उसका कार्य। देखो शंका, क्या यह दुरापकृष्टि एक विकल्प वाली है या अनेक विकल्प वाली है? अभी जो हमने पढ़ा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे भेद बताए। समाधान, कितने ही आचार्य कहते हैं कि वह एक विकल्प वाली है, क्योंकि वह पल्लोपम के निर्विकल्प अर्थात सबसे जघन्य प्रमाण रूप संख्यात्वे भाग से प्रतिबद्ध है। अभी यहाँ पर भी संख्यात्व भाग, जघन्य संख्यात्व भाग लिख दिया। देखो यहाँ संख्यात्वा भाग कह रहे हैं, सबसे जघन्य संख्यात्वा भाग, मैं अभी दूसरी बात पूछ रही हूँ, सबसे जघन्य संख्यात कौन सी संख्या है? जघन्य संख्यात दो है, तो दूसरा भाग यानी सबसे उत्कृष्ट संख्यात वाला भाग रहेगा कि नहीं? मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो यदि हम जघन्य संख्यात को दो लिखेंगे, अभी समझने के लिए उत्कृष्ट संख्यात के लिए हम 15 लिखेंगे, ये दो हमारा जघन्य संख्यात है, उत्कृष्ट हमारा 15 है, हमने मान लिए दोनों को संख्यात, 16 करेंगे तो असंख्यात हो जाएगा। तो हमने अभी किसी भी संख्या का मान लेते हैं, कुछ भी संख्या, अच्छा 300 ले लो, इजी हो जाएगा। 300 का दूसरा भाग, इसको भी संख्यात्वा भाग कहेंगे, इसकी वैल्यू है 150, और 300 का 15वां भाग वो भी संख्यात्वा भाग कहेंगे, उसकी वैल्यू है 20। तो कौन सा संख्यात्वा भाग छोटा है, बोलो नितिन भाई, संख्यात्वा भाग कौन सा शेष जो बचता है, जो उत्तर आता है वो कौन सा छोटा है? 20 वाला छोटा, यानी ये दूसरा भाग छोटा है कि 15वां भाग छोटा है? 15वां, यानी यहाँ जहाँ भाग देने वाली संख्या बड़ी से बड़ी होगी वहाँ वो संख्यात्वा भाग सबसे छोटा होगा। इसका अर्थ है जहाँ उत्कृष्ट संख्या से हम भाग देंगे, दो से लेकर कहाँ कौन किसको उत्कृष्ट संख्यात कहेंगे, जघन्य परिता संख्यात, मिनिमम असंख्यात से जो एक कम है, मिनिमम असंख्यात का नाम मालूम है, जघन्य परिता संख्या, उसमें एक कम करेंगे उसको क्या कहेंगे, उत्कृष्ट संख्या। तो यह ऐसा संख्या का भाग है सबसे छोटा, कैसे आया, पल्ले को उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर यह संख्या आई, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो जघन्य है, उसका पल्ले का संख्यात्वा भाग ही है, परंतु वो अंतिम वाला विकल्प लिया हमने उसमें। यहाँ तक की बात ख्याल में आई बात, अभी आगे, हाँ उसके आगे तो बहुत बड़ा कांडक होगा, हाँ उसके आगे तो बहुत छोटा संख्यात्वा भाग शेष रहेगा, बहुभाग तो नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहना चाहते, देखो एक क्या मत है, सबसे जघन्य प्रमाण रूप संख्यात्वा भाग, इसका अर्थ है पल्ले डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्या, तब ये संख्यात्वा भाग जघन्य होगा, समझ में आती, पल्ले डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात करेंगे तो पल्ले का संख्यात्वा भाग जघन्य होगा। और वह निर्विकल्प पल्योपम का संख्यात्वा भाग पल्योपम को जघन्य परिता संख्यात के उससे भाजित कर वहाँ जो एक अधिक एक भाग प्राप्त हो तत्प्रमाण है।
पल्योपम को जघन्य परिता संख्यात से
भाजित कर वहाँ जो एक अधिक एक भाग प्राप्त हो,
एक भाग ज्यादा नहीं होगा,
जो निर्विकल्प पल्योपम का संख्यात्वा भाग किस प्रमाण है, हम यहाँ करके देखते ना, 16 से भाग दिया हमने, पल्योपम को जघन्य परिता संख्या से भाजित कर वहाँ जो एक अधिक एक भाग प्राप्त हो, एक अधिक एक क्या है
वहाँ पे, एक संख्या एक की तो एक भाग ज्यादा है ना, डिविजन में हमने एक संख्या एक की
एयर की,
हाँ। तो एक भाग ज्यादा,
एक अधिक एक भाग प्राप्त हो तत्प्रमाण है, क्योंकि इसमें से एक भी स्थिति विशेष की हानि होने पर पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण विकल्प की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ यदि हम इसको 16 से भाग देते हैं तो हम क्या कहेंगे, वो पल्ले का असंख्यात्व भाग शेष कहेंगे, ये इसके हम 15 के बदले 16 से भाग देते हैं तो 16 से भाग देंगे तो क्या संख्या आएगी, मान लेते हैं हम 16 के 16 और यहाँ 32 14 140 हो गए ना, 16 28 94 84 अभी 18 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं ना, 18 होते हैं। इसके आगे अगर चले जाएंगे हम भागार में बढ़ाएंगे, एक भी बढ़ाएंगे तो वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग कहलाएगा,
देखो तो यहाँ पे विकल्पात्मक जो बता रहे हैं वो एक ही संख्या होगी ना।
नहीं, जब तक वो असंख्यात्व नहीं होगा तब से क्या करेंगे, उसको संख्यात्व कहेंगे कि असंख्यात्व कहेंगे, बीच वाले जो पॉइंट।
यहाँ पे हमने देखा कि
यदि हम इसको 18 कहेंगे तो 19 को क्या कहेंगे।
नहीं, पर हमने क्या देखा कि अनुभूति कारण से सभी की स्थिति समान होगा और कठोर भी समान ही होगी, तो यहाँ पे जो दुरावृष्टि होगी वो एक ही सभी जीव के समान ही होगी।
यही उसी की चर्चा चल रही ना अभी यहाँ पर। यहाँ देखो देखो, यहाँ हम पूरा पढ़ेंगे समाधान, फिर और उसका विशेषार्थ भी पढ़ेंगे, फिर कुछ कंक्लूजन पर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक भी स्थिति विशेष की हानि होने पर, स्थिति विशेष यानी निषेक, पल्लोकम के असंख्यात भाग प्रमाण विकल्प की उत्पत्ति होती है। यदि इसमें एक भी निषेक ज्यादा कट होता है तो असंख्यात भाग रह जाएगा। अभी तो क्या कहेंगे, उस संख्यात्व भाग शेष रहता है। अभी इसमें और एक निषेक किसी का कट हो गया तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यात भाग रह गया। किंतु हम कहते हैं वह अनेक विकल्पों वाली है। अभी आचार्य स्वयं भीषण स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि और यही बात वहाँ लिखी, अभी हमने लब्धिसार में पढ़ी थी, अनेक विकल्पों वाली, क्योंकि पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म की उत्पत्ति के कारणभूत, पल्लोपम के संख्यात भाग प्रमाण स्थिति के विकल्प, पल्लोपम के असंख्यात प्रथम वर्ग मूल प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यथा, ये क्या कहना चाहते वो अभी समझाएंगे। यानी जहाँ इतना बड़ा कांडक नष्ट हो जाएगा अभी और पल्ले का असंख्यात भाग शेष रहेगा बाद में, तो उसके लिए अलग अलग विकल्प कैसे हो सकते उसकी बात यहाँ बताने जा रहे हैं। यानी जो पल्लोपम के संख्यात भाग प्रमाण कहा ना विकल्प, तो वो अलग अलग कितने हो सकते हैं, तो कहते हैं कि पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण हो सकते हैं, विकल्प अलग अलग। यानी पल्ले का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, इतने अलग अलग वहाँ पॉसिबिलिटीज हो गई। विकल्प का अर्थ क्या है, भेद यानी पॉसिबिलिटीज अलग अलग। वहाँ तो एकमात्र लिया था उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर, अब उसमें एक परमाणु बढ़ाओ दो बढ़ाओ तीन, भागाहार एक से बढ़ाओ दो, या परमाणु एक दो तीन चार बढ़ाओ, निषेक एक दो तीन चार बढ़ाओ, अब यहाँ बताएंगे। यथा उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, विरलन अंकों के प्रत्येक एक के प्रति पल्लोपम के समान खंड करके देय रूप से देने पर। अब यहाँ उनकी भाषा तो विरलन के होती है तो हमें बहुत डर लगता है ना। विरलन का अर्थ क्या होता है और देय का अर्थ होता है क्या, उसको पहले देखेंगे। जैसे हमारे पास चार संख्या है, उसका हमें विरलन करना है, विरलन करना तो उसके एक एक करके बिखेर देना। अब इस चार के ऊपर 256 के समान खंड करके दे दो, आप कितने देंगे हर एक एक के प्रति, हर एक के प्रति 64 देंगे, हाँ करो तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 64।
वो तो चार हो जाएगा।
तो यहाँ कहते हैं 256 को हमको समान खंड करके दे दो, विभाजित करो। विरलन के प्रति देय देने का अर्थ होता है उसको आपस में गुणा करना। यदि हम 256 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते तो हर एक एक के प्रति हमको चार चार लिखना पड़ेगा, यानी विरलन भी चार हुआ और देय भी चार हुआ, और बड़ी संख्या देना है, पनट्ठी को दे दो हमें क्या, तो क्या लिखना पड़ेगा, पनट्ठी यानी क्या, 65,536, उसको विभाजित करके दे दो चारों में,
16 आ जाएगी,
क्योंकि 256 का वर्ग होता है ना, उसको ख्याल में ना, ये विरलन क्या करना। अब यहाँ क्या करें, उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, विरलन अंकों के प्रत्येक एक के प्रति पल्लोपम के समान खंड करके देय रूप से देने पर। यहाँ वो बात नहीं हो रही है, यहाँ तो उन्होंने विरलन के प्रति देना है, उसको समान खंड करके देना है, चार के प्रति समान खंडित करना है तो उसके बस उसको भाग देना चार से, जैसे आपने पहले 64 कही ना बात, 64 64 128 और 128 256 हो जाएगा। तो विरलन के प्रति उन्हें हमने इतने समान भाग करके दे दिया, वहाँ हमने देह और विरलन की बात की, यहाँ केवल समान खंड करना है। तो 256 हमने उसमें विभाजित किए, तो 64 प्लस 64 करना, अभी इसको गुणा नहीं करना है। यानी अपनी भाषा में क्या, हमने 256 को चार से भाग दिया, यहाँ उनकी भाषा विरलन में आती है, एक एक अंक के प्रति पल्लोपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्राप्त होते हैं। ये भी देखना है, असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्राप्त होते हैं।
देख लेते हैं। असंख्यात वर्गमूल प्रथम वर्गमूल ना?
यानी उसको देर केवल विभाजन करना है, कैसे करना? क्योंकि पनठी अगर हम देते हैं तो पहला वर्गमूल 256 है और उसको चार से असंख्या से गुणा करेंगे तो जो हमने पहली बार जो दिया था 16 16 वो भी घटन नहीं होगा। अभी देखेंगे आगे क्या कहना चाहते हैं। वहां विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का प्रमाण पल्लोपम का सबसे जघन्य संख्यात्वा भाग कहा जाता है। पल्लोपम का सबसे जघन्य संख्यात्वा भाग कहा जाता है।
बराबर, हमने उत्तर संख्या से भाग किया है तो ये संख्यात्वा भाग आएगा, तो जगह में जगह नहीं होगा।
हाँ, पल्ले पनटी मान असंख्यात प्रथम वर्गमूल कैसे हो गए? 256 को किसी दो या चार से गुणा करेंगे तो असंख्यात प्रथम वर्गमूल होगा। अच्छा, और यहाँ हमने कितने दिए पनट्टी के? चार भाग करके दिए हमने। अच्छा अच्छा, ये 16 16 384 दिए, यही बात है ना? 16 384 पनट्टी का चौथा भाग है, वो हमने अगर दिया है तो उसका अर्थ होता है प्रथम वर्गमूल 256 मल्टीप्लाइड बाय चार, मल्टीप्लाइड बाय चार हो, कितने हो गए?
4000।
हाँ नहीं नहीं, चार नहीं,
चार नहीं हुआ,
मल्टीप्लाइड बाय 16 हो गए नहीं?
हाँ 16
नहीं होगी, 16 2 32 होते हैं। देखो ये चौथा भाग है और वो 256 गुना 256 है। किसका? प्रथम वर्गमूल का गुणा करना है, असंख्यात गुणा करना है। तो 256 को कितने से गुणा करेंगे तो हमें 16 मिलेंगे? मैं बताती हूँ, 16 384 / 256 करो, 16 का भाग देना, ऊपर 16 1 16 16 0 0 14 32 64 64, नीचे 16 ऊपर 1024 आए, 16 भाग दसो का 16 85 66 96 64 64 आ गए। 256 मल्टीप्लाइड बाय 64 से ये भाग आती है। छोटी संख्या लेनी है, हम चार में 256 को विरलन करेंगे, क्योंकि ये क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। आपने जैसे कहा 64 कर दो उसको, तो 64 संख्या क्या है? 256 का प्रथम वर्गमूल का असंख्यात गुणा है। 256 का प्रथम वर्गमूल कितना है? 16 है, और उसको विशिष्ट असंख्यात से गुणा करो 64 आता है, ये संख्या।
तो क्या ये भेद का प्रमाण इससे भी नहीं? ये जो विकल्प जो बता रहे हैं इससे विकल्प प्राप्त हो जाएगी?
हाँ, अभी तो क्या बता रहे, देखो पहले में पहले क्या किया उन्होंने, नीचे विरलन किसका किया, उत्कृष्ट संख्यात का, और उसके ऊपर क्या दिया, तो पल्ले को दे दिया,
पल्ले को भाग कर दे
दिया। या मान लेते चार संख्या करेंगे तो पल्ले के तो चार भाग करेंगे, पंद्रह करेंगे तो पल्ले के पंद्रह भाग करेंगे, तो ये कितने करने पल्ले के, कितने भाग करने, उत्कृष्ट संख्या भाग करने। फिर भी क्योंकि वो असंख्यात वाली संख्या है, तो पल्ले के उत्कृष्ट संख्या प्रमाण हम भाग करेंगे तो भी एक एक भाग के प्रति असंख्यात का प्रमाण आएगा। चल में आती कि नहीं बात? वो तो हमने पहले बताया था। हाँ, अभी तो ये पूरा पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक प्रथम वर्गमूल यानी क्या होता है, यानी अपनी भाषा में वो विरल अंक छोड़ दो, पल्ले को उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे, तो पल्ले का संख्यात वाला भाग ही असंख्यात है कि संख्यात है, ये मैं पूछती हूँ। पल्ले को उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तो असंख्यात संख्या आएगी, इसका उत्तर असंख्यात में आएगा कि संख्यात में आएगा?
असंख्यात
में आएगा।
नहीं नहीं, पल्ले का संख्यात में भाग हो जाएगा,
ये पल्ले का संख्यात में भाग, परंतु उसकी वैल्यू कितनी आएगी, असंख्यात आएगी। विरलन करने से यही बात बता रहे, ये कितनी असंख्यात होगी, तो पल्ले का जो प्रथम वर्गमूल है
उसको
विशिष्ट कोई पर्टिकुलर असंख्या से गुणा करो, इतनी बड़ी वो वैल्यू आएगी। इतनी बात अभी तक हमने पढ़ी, इसके आगे अभी गए नहीं है।
बराबर है, ये जो पल्ले पल्ले का प्रथम वर्गमूल जो असंख्या है वो पल्ले का संख्या तो होगा। बराबर, पर वो संख्या है वो असंख्या,
ये असंख्यात है, परंतु वो क्या है, कैसे आई हो, पल्ले को उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर आ गए, यानी पल्ले डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्या इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पल्ले मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात।
प्रथम वर्गमूल इज इक्वल
टू, अभी यहाँ तक इतना ही हमने पढ़ा है, अभी आगे नहीं गए। अभी समझे, वो विरलन के रूप में लिखते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है अपना, इस पूरा पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो प्रकाश हो जाएगा इधर। पहले हमने क्या किया, उत्कृष्ट संख्या को विरलन किया, एक एक में बिखेर दिया, उसके ऊपर पल्ले के समान टुकड़े करके उसके ऊपर बांट दिए, अपनी भाषा में पल्ले डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्या, जो संख्या आएगी उसको कहेंगे एक एक विरलन के प्रति इतना प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आई ना? तो कितना प्राप्त होता है, तो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, इसका अर्थ होता है पल्ले का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, वहाँ विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का प्रमाण पल्योपम का सबसे जघन्य संख्यात्वा भाग कहा जाता है। ये वही संख्यात्वा भाग है ना, जघन्य संख्यात्वा भाग, जघन्य संख्यात्वा भाग कैसे आया, उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर जघन्य संख्यात्वा भाग है, जैसे हमने वो 15 और 2 का दिखाया था आपको, 300 को 2 से भाग दिया, जघन्य संख्या से भाग दिया तो उत्कृष्ट संख्यात वा भाग आया उत्तर, और उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया तो जघन्य संख्यात वा भाग आया। भागाकार जितना बड़ा उतनी संख्या छोटी। तो ये जो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल है वो क्या है, पल्ले का उत्कृष्ट संख्यात वा भाग है, वही इसको एक एक विरलन के प्रति प्राप्त संख्या बताई। अब आगे, अब इसमें से यदि एक अंक की हानि होती है तो भी,
ये विरलन के प्रति बता रहे,
इसमें से अगर एक अंक की हानि होती है तो भी पल्योपम का संख्यात्वा भाग ही शेष रहता है, यानी ये जो है वो पल्य का संख्यात्व भाग शेष है,
उसमें से एक कम कर दो तो वो भी पल्य का संख्यात्व भाग,
संख्यात्व भाग ही कहेंगे हम उसको। दो अंकों की हानि होने पर भी पल्यपुंग का संख्यात्व भाग ही शेष रहता है। इस प्रकार एक एक अंक को बढ़ाकर अंकों के कम होने पर यदि बहुत बहुत अंकों की हानि होती है तो विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त इस द्रव्य को पुनः जघन्य परिता संख्या से भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो उतना जब तक क्षीण नहीं होता तब तक इस पल्यपुंग का संख्यात्व भाग पना नहीं फेंटता, क्योंकि संपूर्ण एक भाग के हीन हुए बिना पल्यपुंग में जघन्य परिता संख्यात का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण स्थिति सत्कर्मों रूप विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। देखो अभी हम यहाँ देखें हम 1800 संख्या लेते हैं, उसको उत्कृष्ट संख्या हम 15 से भाग देते हैं, उत्तर कितना आया 120। अब हम इसी को, ये हमारी उत्कृष्ट संख्या है, हम इसी को जघन्य परिता संख्या था नहीं, इसमें से एक ज्यादा, इसमें एक ज्यादा 16 से भाग देते हैं तो कितने आए 16 के 16 ये नहीं आता ना, 1800 नहीं आता, एक मिनट 16 नहीं 15 तो गुणा कर 15 15 225 हाँ कितना 14000। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, 16 85 चले 8 16 के 16
नहीं हाँ
1 1 2400 लेंगे, इन दोनों का गुणाकार किया ना 1800 बदले हम 2400 लेते, दोनों का भाग जाना चाहिए। अभी करो 15 के 15 9 15 तक 90 हाँ, अब यहाँ 2400 डिवाइडेड बाय 16 16 के 16 16 85
इससे 10 विकल्प मिले।
अब बोलो मत कुछ, नहीं इसलिए नहीं बोलो कहाँ, क्योंकि ये तो कंक्लूजन पर जाते हैं, बाकी लोगों को हमको डेवलप करना है। देखो अभी 160 है वो 2400 का 15वां भाग है, संख्यात्वा भाग है, असंख्यात्वा भाग कब कहेंगे जब 150 हो, जब 161 हो गए सॉरी 159 हो गए तो क्या कहेंगे संख्यात्वा भाग, 158 को क्या कहेंगे संख्यात्वा भाग, 157 को संख्यात्वा भाग, 151 को संख्यात्वा भाग, 150 को असंख्यात्वा भाग। तो ये सारे बीच वाले जो विकल्प है वो सारे क्या हो गए संख्यात्व भाग हो गए। जब तक असंख्यात्व भाग तक नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या कहेंगे संख्यात्व भाग कहेंगे। तो अभी इसके विरलन के प्रति कितना था
107
हर एक विरलन के प्रति,
और किसे संख्या संख्या का भाग उसके बीच वाले जो विकल्प हुए वो सब संख्या का भाग,
ये संख्या से भाग, जब तक असंख्या का भाग नहीं होता उन सबको हम संख्या का भाग कहेंगे। हाँ अभी 2400 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा उसमें असंख्या, हाँ स्क्वायर रूट कितना होगा 24 का 27 का 8 4 16 25 समझे ना, 5 के अराउंड ले ना 50 जितना ले लो 50 का लेते तो 2500 होता है, तो उससे कुछ गुना करेंगे तो उतने क्या होंगे, वो
विकल्प
विकल्प होंगे। देखो यहाँ फिर पढ़ेंगे हम, तो वहाँ विरलन के एक अंक के प्रथम मिला, ये जहाँ यथा लिखा है देखो 46 पृष्ठ पर समाधान की सातवीं लाइन फिर से पढ़ेंगे। उत्कृष्ट संख्या का विरलन कर, विरलन अंकों के प्रत्येक एक के प्रति, अभी हमने विरलन कर 15 का विरलन कर समझ लो, विरलन प्रत्येक अंक के प्रति पल्योपम के समान खंड करके देय रूप से देने पर, यानी हमने 2400 को समान खंड करके दे दिया, 15 में बांट दिया, विरलन के एक एक अंक के प्रति पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्राप्त होते। अभी 2400 को असंख्यात यानी मान लेते 50 के आसपास जो कुछ सूचे होंगे तो उसको थोड़े गुणा करो तो उतने हो जाएगी। वहाँ विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त राशि का प्रमाण पल्योपम का सबसे जघन्य संख्या का भाग है, जो हमने यहाँ 160 देखा, 2400 डिवाइडेड बाय 15 160 हो जाएगी, वो सबसे जघन्य उसका कह दिया। अब इसमें से यदि एक अंक की हानि होती है, 160 में से एक कम हुआ 159 रह गया, तो भी वो पल्योपम का संख्यात्व भाग ही शेष रहता है। असंख्यात्व कब कहेंगे, जब 16 से भाग देने पर 150 आएगी तब असंख्यात्व कहेंगे, तब तक बीच वाले विकल्पों को क्या कहेंगे, संख्यात्व भाग। दो अंकों की हानि होने पर भी पल्योपम का संख्यात्व भाग ही शेष रहता है। इस प्रकार एक एक अंक को बढ़ाकर अंकों के कम होने पर यदि बहुत बहुत अंकों की हानि होती है तो विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त इस द्रव्य को पुनः जघन्य परिता संख्या से भाजित कर जो एक भाग प्राप्त होता उतना जब तक हीन नहीं होता। अभी अश्विन भाई आप इसका उत्तर बताओगे, इस वाक्य का अर्थ मुझे बताओ आप।
एक कम
इस वाक्य का हमको अर्थ बताओ,
भाजित कर जो एक भाग प्राप्त होता,
एक भाग का अर्थ क्या है,
जब तक हीन नहीं होता।
हाँ, किसमें से नहीं होता, हाँ।
ये उत्कृष्ट संख्या से ये जो हमने जो असंख्या का भाग जो प्राप्त नहीं होता है तभी तक के जो विकल्प मिलेंगे उसने विकल्प यहाँ पे बताया,
उसका प्रमाण कैसे निकाले, इसमें से कितने विकल्प मिलेंगे बीच में हमको
प्रथम वर्गमूल में।
यहाँ पूरा लिखा है इस वाक्य में, पूरा लिखा है। अब हमने ये 160 निकले ना हमारे पास, अभी सुनो 160 मिले हैं, उसको 16 से यानी जघन्य परिता संख्या के भाग दे दो, कितने आया, 160 डिवाइडेड बाय 16 10 आए, तो 10 विकल्प जो है 160 से लेकर ये 10 विकल्प तक संख्या कहेंगे और बाद में उसको असंख्या कहेंगे। 160 को जघन्य परिता संख्या से भाग दो उतने विकल्प है उतने यहाँ मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इस वाक्य को, देखो 60 पकड़ना है, 60 को पकड़ कर उसी को विकल्प कहेंगे। 60 तो उत्कृष्ट डायरेक्ट उसका विकल्प है ही है, 60 को तो हम वो उत्कृष्ट संख्या का भाग तो यानी उत्कृष्ट संख्या से भाग देकर भाग है उसको तो हम जघन्य भाग कह ही रहे हैं, परंतु बाकी कब तक कहना उसको, तो ऐसे कितने विकल्प हो गए, गुण 160 159 58 57 56 55 54 53 52 51 और
इक्यावन
10 हो गए ना, तो ये 10 विकल्प कैसे निकाले, जो हमने 160 प्रमाण निकाला था उसको हमने मान लिया जघन्य परिता संख्या 16 उसको भाग दे दो तो 10 आए, तो 10 विकल्प हो गए। अभी इस वाक्य को फिर पढ़ो, ये जहाँ वहाँ हम संख्या डालेंगे तो अच्छा है। देखो हमने शुरू किया था यथा से, उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, हमने मान लिया 15 का विरलन अंगों के प्रति एक के प्रति पल्योपम के समान खंड करके 2400 के समान खंड कहिए, देय रूप से देने पर विरलन के एक एक अंग के प्रति पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, यानी हमारे कितने मिले हैं, 160 मिले हैं ना प्राप्त होते, वहाँ विरलन के एक अंक के प्रति राशि का प्रमाण पल्योपम के सबसे जघन्य संख्यात्वा भाग कहा जाता है। ये तो स्टेटमेंट हुआ। अब इसमें से यदि एक अंक की हानि होती है यानी 159 हो जाते हैं तो भी पल्योपम का संख्यात्वा भाग ही शेष रहता है। दो अंकों की हानि होने पर भी पल्योपम का संख्यात्वा भाग ही शेष रहता है। इस प्रकार एक एक अंक को बढ़ाकर अंकों के कम होने पर, यानी एक कम किया, बढ़ाकर दो कम किए, बढ़ाकर तीन कम कर दिए, बढ़ाकर चार कम कर दिए, इस तरह से यदि बहुत बहुत अंकों की हानि होती है तो विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त इस द्रव्य को, अभी इसमें 160 लिखो, पुनः जघन्य परिता संख्या से भाजित कर इसको 16 लिखो, जो एक भाग प्राप्त हो ये होगा 10। उतना जब तक क्षीण नहीं होता तब तक, क्षीण होने पर वो जघन वो असंख्यात्व भाग कहलाएगा, तब तक इसका पल्योपम का संख्यात्व भागपना नहीं फिटता लिखे का मेटता फिटत दी नहीं फिटता हाँ फिटना फिटना मराठी मराठी फिट नहीं मनता ना अपन नहीं चला जाता फिर दिया
एक एक पैसा करके दे दिया
नहीं वो फिटना के नहीं कर्जा फिटने क्योंकि देखो क्योंकि संपूर्ण एक भाग के हीन हुए बिना संपूर्ण एक भाग यानी संपूर्ण वो दस एक भाग यहाँ दस का आया ना संपूर्ण एक भाग के हीन हुए बिना पल्योपम में जघन्य परिता संख्या का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे अभी हमारा एक भाग लब्ध है 150 आएंगे तत्प्रमाण स्थिति सत्कर्म रूप उपकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है क्या नहीं बात जब तक 160 में से एक भाग यानी 10 नहीं मिटते कम नहीं होते हैं यानी जब 150 हो जाएंगे तो जघन्य परिता संख्या का भाग हो जाएगा संख्या का भाग हो जाएगा उसको हाँ पहले हमने जो देखे थे ना संख्या का भाग असंख्या का भाग तो ये बीच वालों को अवक्तव्य कहते याद है क्योंकि 15वां भाग तो संख्या का भाग कह दिया 16वां भाग असंख्या का भाग कह दिया तो ऊपर वाले जो पॉइंट 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 हो गए उसको ना असंख्यात कह सकते हैं ना संख्यात कह सकते उसको अवक्तव्य कह दिया उसी को यहाँ संख्यात में गिनना क्योंकि जब तक असंख्यात्वा भाग नहीं होता तब तक वो सारा संख्यात्वा कहला है ये इसलिए इसके विकल्प कर दिए उन्होंने इसलिए अभी आगे वो बता रहे दूरापकृष्टि पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण विकल्प वाली है यह सिद्ध हुआ अभी इतना प्रूफ चाहिए ना यानी वो क्या है पल्ले का संख्यात्वा भाग है जघन्य संख्यात्वा भाग है ना वो छोटे में छोटा संख्यात्वा भाग है क्यों बड़े में बड़े संख्या से भाग दिया था बड़े उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया तो जघन्य संख्यात्वा भाग आया तो दुरापकृष्टि पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण विकल्प वाली है यह सिद्ध हुआ यह उदाहरण मात्र कहा है इसी दिशा से अन्य भी दुरापकृष्टि रूप विकल्प उत्पन्न कर लेने चाहिए क्योंकि जघन्य परिता संख्यात के अर्धभाग और चतुर्थ भाग आदि के द्वारा भी पल्योपम के भाजित करने पर दुरापकृष्टि रूप विकल्पों की उत्पत्ति का निषेध नहीं है क्या कहना चाहते हैं अभी तो हमने 16 से भाग दिया था ना 16 से भाग दिया 16 के आधे से भाग देंगे तो क्या होगा वो भी पल्ले का संख्या तो भाग ही कहलाएगा अब जो 300 आएंगे तो उसके बाद हम जो असंख्या बहुभाग नष्ट करेंगे तो शेष भाग संख्या तो ही रहने वाला है।
तो ये तो विकल्प बहुत ज्यादा है।
वही तो कहते हैं उसके कितने विकल्प बताए, इसलिए दुरापकृति के विकल्प बहुत बताए। देखो जघन्य परिता संख्यात ये असंख्यात है, पर जघन्य परिता संख्यात का आधा प्रमाण संख्यात है कि असंख्यात है?
संख्यात है,
उसमें एक भी कम करो तो उत्कृष्ट संख्यात आती है। अब इसका आधा करो
उसका वन फोर करेगा वो भी संख्या,
वो तो और छोटी संख्या है, नहीं वो तो बहुत बड़ा संख्यात्व भाग रह जाएगा। इसका अर्थ ये सारे संख्यात्व भाग शेष रहते हैं, पर इसके पश्चात वाला जो कांडक है वो असंख्यात भूभाग वाला होगा। इसलिए दुरापकृष्टि जो नाम है वो अनेक भेद वाला होगा, ये बात यहाँ बताते हैं। परंतु उन सब में पल्ल्य का संख्यात्वा भाग शेष रहता है, असंख्यात्व नहीं।
पर यहाँ पे वापस एक लोग होता है कि हम लोग की जो रेखा का अभिवृत्तिकरण से अब शुरुआत में पहला कांडक होता है तभी सभी की स्थिति समान हो जाती है।
देख अभी हम पढ़ेंगे तो इन भेदों में से जिनेन्द्र देव ने उसे जिस रूप में जाना हो ऐसी किसी अन्यतर भेद से संबंधित एक भेद वाली दुरापकृष्टि यहाँ पर ग्रहण करनी चाहिए। ये कौन सी हो सकती है, इसलिए इसमें विकल्प है। आपका जो प्रश्न है सबके एक समान होने चाहिए, है एक समान, परंतु एग्जैक्ट कौन सी है? तो जो जिनेन्द्र भगवान ने यथायोग्य जानी है, कौन सी हो सकती है इसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए इतने विकल्प बताए। उन इतने विकल्प अलग अलग जीवों के नहीं पाए जाते हैं। अनिवृत्ति का अर्थ ही होता है सबके समान परिणाम, कांडक भी प्रमाण सेम होगा, शेष स्थिति भी सेम होगी, सब समान होगा। इसलिए उसमें यथा योग्य जो कोई भगवान के ज्ञान में आई है बात, वैसा पल्ल्य का संख्यात्वा भाग प्रमाण वहाँ शेष रहेगा। क्योंकि अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा घात करने से अवशिष्ट रही उसके अनेक भेद वाली होने का विरोध है। असल में आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है इसमें, तुम थोड़ा थोड़ा शांति से। हाँ ये सामने थे क्या? हा? तो समाधान तब नहीं हुआ, तो अभी उन्होंने लिख के रखा वो पढ़ने की नौबत आ गई। वही थे हाँ
हाँ तो अभी तो बहुत अफसोस होता है कि क्यों नहीं समझा।
तो ऐसा दुर्भाग्य है कि अभी समझना पड़ा। हाँ है तो एक ही, हाँ कौन सी है वो हम उसके इतने भेद सोच सकते हैं, उसमें से कोई एक भेद होगा। अभी एक ही उपाय बाकी है, केवल ज्ञान प्राप्त करना। ये सब सीखने से वो ज्यादा आसान है, वो समझते नहीं है सबसे आसान बात, इसलिए इतना कठिन करके समझाना पड़ता है। यदि इससे छुटना छुटकारा चाहते हो ना तो बस केवल ज्ञान सब जान जाओ, क्योंकि आत्मा में रम जाओ बस हो जाएगा। सर थोड़ा पढ़ेंगे विशेषार्थ, अभी फ्रेश है तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना? विशेषार्थ जब स्थिति कांडक घात होते होते स्थिति सत्कर्म मैंने सत्ता वाले कर्मों की स्थिति मात्र दर्शन होने की बात चल रही, पल्ल्योपम प्रमाण शेष रह जाती है, तब स्थिति कांडक का जो प्रमाण पहले था, पहले कितना था पल्ल्य का संख्यात्वा भाग, फिर भी वो संख्यात्वा भाग जाकर वह बदलकर अवशिष्ट स्थिति सत्कर्म का संख्यात बहुभाग हो जाता है। किसका प्रमाण? कांडक का प्रमाण संख्यात बहुभाग रह जाता है। और इस प्रकार उत्तरोत्तर उक्त विधि से स्थिति कांडक घात होते होते जब सबसे जघन्य पल्ल्योपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है, तब वह दुरापकृष्टि इस नाम से पुकारी जाती है। सबसे जघन्य इसलिए कहा कि इतनी स्थिति में से अब असंख्यात बहुभाग प्रमाण नष्ट होने पर आगे वाला जो शेष स्थिति का प्रमाण पल्ले का असंख्यात भाग रह जाए, क्योंकि इसके बाद वाला कांडक है वो असंख्यात बहुभाग वाला है। तो यहाँ कितनी हो सकती है, हो सकती है उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर हो या उससे भी अन्य अन्य विकल्प ले जाओ वहाँ पर कम विकल्पों वाले, जैसे हमने 15 से भाग दिया, 14 से दे दो, 13 से दे दो, उन्होंने 8 से भी देके दिखाया, 4 से भी देके दिखाया, इसमें से कुछ भी हो सकता है। यह घटते घटते अति अल्प रह गई है इसलिए इसे दुरापकृष्टि कहते हैं, अथवा शेष रही स्थिति से आगे उत्तरोत्तर अवशिष्ट स्थिति के असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति को ग्रहण कर स्थिति कांडक घात होता है, इसलिए इसे दुरापकृष्टि के दुरापकृष्टि का कारण दोनों ओर से बताएं। अब प्रश्न यह है, यह दुरापकृष्टि एक विकल्प वाली है या बहुत विकल्प वाली है? इसके लिए हमने ये सारी बातें देखी यहाँ पर। इस विषय में दूसरे आचार्यों के अभिप्राय से तो टीकाकार ने उसे एक भेद वाली बतलाया है। कौन सी उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर होगी वो एक मत है वैसा। उनका कहना है कि पल्लवकम में जघन्य परिता संख्या का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसमें एक अंक के मिलाने पर, यानी अभी हमारे उदाहरण में हमने 2400 को 16 से भाग दिया, यहाँ संख्या डालो तो आपको समझने में आसान होगा कि पल्लवकम में यानी हमने 2400 में जघन्य परिता संख्या का यानी 16 का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आया यानी 150 आया उसमें एक अंक के मिलाने पर यानी 151 से लेकर, हमने उल्टा घटित किया था, हमने 160 से लेकर 151 तक आए थे, तो कहते एक अंक के मिलाने पर जो संख्या प्राप्त हो दुरापकृष्टि का प्रमाण उतना ही है। ये सबसे जघन्य संख्या का भाग हुआ ना, 160 से भी नीचे उतर कर आया, 150 हो जाएगा तो असंख्या का भाग कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक भी अंक की हानि होने पर, अभी एक भी अंक की हानि हो जाती तो क्या होगा, 150 आएंगे है ना। पल्लवकम के असंख्यात रे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म संबंधी भेद की उत्पत्ति होती है, किंतु टीकाकार स्वयं उस दुरापकृष्टि को अनेक भेद वाली स्वीकार करते हैं, यानी वो मात्र 151 नंबर वाला नहीं है तो उसमें अनेक भेद हो सकते हैं, 151 52 53 54 वो सब ले लो। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण करते हुए जो कुछ बताया है उसका तात्पर्य यह है कि पल्लवकम प्रमाण स्थिति सत्कर्म में हमने 2400 माना था, उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर हमने 15 माना था, जो स्थिति विकल्प प्राप्त हो 160 हुआ था हमारे लिए, वहाँ से लेकर एक एक स्थिति विकल्प कम करता जाए यानी 160 159 158 वगैरह कम करते जाए, इस प्रकार पल्लवकम में जघन्य परिता संख्या का भाग देने पर जो स्थिति सत्कर्म विकल्प प्राप्त हो उससे पूर्व तक कम करें, वो 150 से 151 तक कम करें, इस प्रकार मध्य में जितने स्थिति सत्कर्म विकल्प प्राप्त हुए वे सब पल्लवकम के संख्यात रे भाग प्रमाण होने से दुरापकृष्टि उतने विकल्प वाली सिद्ध होती है। यानी वो 151 से अभी ऊपर चले जाओ, 157 के भी ऊपर जाए तो भी वो संख्या तो अभाग ही शेष रहेगा। टीकाकार ने यहाँ दुरापकृष्टि को जो पल्लवकम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण कहा है वह इसी कारण से कहा है। ये उदाहरण अभी हम कल देखेंगे क्या? जावानी के ज्ञान ते तुझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा दे कहूँ। अश्विन भाई नमो नियंत्रण नमो नमो वज्रम नमो लोहे कपोत्तावनम।
नमोदयंताणम नमोसिद्धाणम नमायानम नमोवज्रणम नमोलोहे सप्तत्रावणम नमोदयंताणम नमोसिद्धाणम नमायानम नमोवज्रणम नमोलोहे सप्तत्रावणम नमोदयंताणम नमोसिद्धाणम नमायानम नमोवज्रणम नमोलोहे सप्तत्रावणम